प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जब विश्वपाद परमहंस परिवराज काचार्य स्तोत्र श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 85वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है वसुदेव जी को आध्यात्मिक उपदेश कृष्ण के द्वारा और देवकी के 6 पुत्रों को पुनः वापस लाना। इसके श्लोक क्रमांक 3 को हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग कृपया दोहराइए। कृष्ण कृष्ण महायोगे संकर्षण सनातना जानिवामस्य यत्साक्षात् प्रधान पुरुषो परो कृष्ण कृष्ण महायोगे संकर्षण सनातना जानिवामस्य यत्साक्षात् प्रधान पुरुषो परो कृष्ण कृष्ण महायोगे संकर्षण सनातना जानिवामस्य यत्साक्षात् प्रधान पुरुषो परो कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण महायोगिन हे महान योगी संकर्षण, हे बलराम सनातन नित्य, जाने मैं जानता हूं वाम तुम दोनों को अस्य इस ब्रह्मांड के, यद जो साक्षात प्रत्यक्ष प्रधान प्रकृति का सृजनात्मक तत्व, पुरुषो तथा सृष्टा भगवान, परो परम। इसका अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है, वसुदेव ने कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, हे नित्य संकर्षण, मैं जानता हूं कि आप दोनों निजी तौर पर ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही साथ सृष्टि के अव्यय भी हो। तात्पर्य, जैसा कि भगवान कपिल देव के सांख्य मत में शिक्षा दी गई है, परम पुरुष की सृजनात्मक शक्ति प्रधान है। इस तरह इन दोनों तत्वों में प्रधान अधिशासित शक्ति स्त्री है, जो स्वतंत्र कार्य करने में अक्षम है, जबकि पुरुष परम स्वतंत्र है और वह आदि सृष्टा तथा भोक्ता है। न तो कृष्ण न ही उनके भाई बलराम किसी अधीन शक्ति की कोटि में आते हैं, प्रत्युत वे दोनों मिलकर आदि पुरुष हैं, जिनके साथ उनके आनंद ज्ञान तथा सृजन की बहुत सी शक्तियां आकर मिल जाती हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादा सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में चर्चा हुई कि कुरुक्षेत्र में बहुत से साधु संत आए और उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान किया, तो वसुदेव जी ने सुना। हालांकि उस समय नारद मुनि ने यह कहा कि वसुदेव जी बच्चा मान रहे हैं कृष्ण को, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जितना भी गुणगान हुआ था बहुत सुना वसुदेव जी ने। तो एक समय द्वारका में जब श्री कृष्ण सुबह के समय चरण स्पर्श करने आए वसुदेव जी के, भारत की प्रथा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक प्रथा है कि सुबह सुबह उठकर वरिष्ठ को या माता पिता को प्रणाम किया जाता है, या प्रभुपाद कहते हैं कि जो शिष्य होते हैं उनको सुबह सुबह गुरु को उठकर प्रणाम चरण स्पर्श करना चाहिए। तो ये करने के लिए जब श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण भी प्रथा का पालन कर रहे हैं। कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि भक्ति में परंपराओं की आवश्यकता नहीं है, या जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हम भक्त हैं और हम भक्ति के कारण ये जो साधारण सभ्यता के नियम हैं इससे परे हैं। तो ऐसा नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण भी सभ्यता का पालन करते हैं, क्योंकि जब हम सभ्यता का या संस्कृति का पालन करते हैं, सभ्यता संस्कृति से बनती है, तो जब हम संस्कृति का पालन करते हैं तो संस्कृति वो पात्र है जिसमें भक्ति को ग्रहण किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए जल लेना चाहते हैं, कोई पात्र नहीं है तो फिर जल इधर उधर गिरेगा, ठीक से नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पात्र में जल लिया जाता है तो उसमें वो बना रहता है। इसी तरह ये जो संस्कृति है ये वो पात्र है जिसमें भक्ति को ग्रहण किया जाता है। अर्थात अगर हम भक्त बन रहे हैं और भक्ति करना चाहते हैं तो हमें संस्कृति को त्यागना नहीं चाहिए, वैदिक संस्कृति को, और वैदिक संस्कृति के उन नियमों को जिन्हें विशेष करके आचार्य गणों ने हमें प्रदान किया है। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि हम नियमों के परे हैं, संस्कृति के परे हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जो भक्त नहीं हैं, हमने तो कृष्ण भक्ति स्वीकार कर ली है। नहीं, संस्कृति सिखलाना प्रारंभ से बहुत आवश्यक है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने कर्मों को लेकर आता है, लेकिन जो संस्कार माता पिता देते हैं वो और उसके पूर्व कर्मों के फल मिलकर उसका भविष्य बनाते हैं। इसीलिए संस्कार बहुत आवश्यक हैं। वैदिक सभ्यता में कई संस्कारों को दिया गया है, गर्भाधान से प्रारंभ होकर अंतिम संस्कार तक। तो संस्कारों का बहुत महत्व है, क्योंकि संस्कार ये संस्कृति के हिस्सा हैं, और संस्कृति का पालन ये भक्ति के लिए अनिवार्य है। अगर संस्कृति ना हो या उसका पालन ना हो तो फिर भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। और वही संस्कृति जब भक्ति में मिल जाती है या भक्ति मार्ग में पालन की जाती है तो वो वैष्णव सदाचार कहलाता है। तो वैष्णव सदाचार क्या है? वैदिक संस्कृति। जैसे हम लोग वैष्णव सदाचार में किस तरह बैठना है, कैसे भगवान के समक्ष रहना है, ये सारे सिखलाया जाता है। तो ये वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। जब वो भक्ति से जुड़ जाते हैं तो वो वैष्णव सदाचार कहलाते हैं, और वैष्णव सदाचार हमें अपराध से बचाते हैं, इसीलिए भक्ति में अनिवार्य है। हमें प्रेम करने के लिए प्रेरित करते हैं कृष्ण से, और भक्तों से आदर और प्रेम इसीलिए आवश्यक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कृष्ण आए और उन्होंने चरण स्पर्श किया सुबह, और उस समय फिर वसुदेव जी ने उनको बिठाया, कृष्ण और बलराम को, और उन्होंने इस तरह अब संबोधित करना शुरू किया। तो वसुदेव जी ने प्रार्थनाएं अर्पण की श्री कृष्ण को। इस अध्याय का शीर्षक दिया गया है वसुदेव को आध्यात्मिक उपदेश। लेकिन अगर हम इस अध्याय में देखें तो पहले 21 श्लोकों में वसुदेव जी की केवल प्रार्थनाएं हैं कृष्ण बलराम को, और कृष्ण के द्वारा वसुदेव जी को जो उपदेश है वो केवल 4 श्लोकों में है। 22 से लेकर 26 तक श्री कृष्ण ये वसुदेव जी को उपदेश देते हैं, और फिर उसके आगे देवकी प्रार्थना करती हैं 27वें श्लोक से, प्रार्थना करके भगवान से कुछ मांगती हैं और फिर भगवान उसको पूरा करते हैं। तो ये अध्याय है। तो अध्याय का शीर्षक है कि आध्यात्मिक उपदेश, लेकिन अधिकतर प्रार्थनाएं हैं। तो इस अध्याय का शीर्षक प्रार्थनाएं क्यों नहीं दिया गया? वसुदेव की प्रार्थनाएं। भगवान ने तो केवल बहुत ज्यादा उपदेश नहीं दिया है। तो इसका कारण यह है कि जो प्रार्थनाएं हैं वो वसुदेव जी ने जो उपदेश सुने आध्यात्मिक उपदेश साधुओं से, उसके आधार पर हैं। और श्री कृष्ण का जो उपदेश है इस अध्याय में, जो भगवान उनको दे रहे हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान अपनी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। तो वसुदेव जी से उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे नहीं नहीं मैं तो आपका पुत्र, जैसे यशोदा नंद महाराज जब उन्होंने कभी कृष्ण को भगवान माना भी, मान लीजिए कि जैसे यशोदा ने एक समय माना, उसने ब्रह्मांड का देखा, भगवान का विराट रूप देख लिया, भगवान ने प्रकट किया मुख में सारे ब्रह्मांड को, तो उस समय थोड़े समय के लिए यशोदा के मन में भी आ गया कि मैं क्या सोच रही हूं, मैं यशोदा हूं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान ने तुरंत हटा दिया। लेकिन यहां जब वसुदेव जी कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ है, आप सृष्टि के कर्ता हैं, आप सृष्टि का पालन करते हैं, भगवान ने मना नहीं किया। भगवान ने कहा जो कह रहे हो सब सही है। क्यों ऐसा है? जब यशोदा के मन में आया कि मैं ये नहीं हूं, जो भी सही बात थी, लेकिन भगवान ने सब हटा दिया कि नहीं 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 बच्चा है आपका। उसका कारण ये है कि ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान, जब भगवान की मधुरता ऐश्वर्य ज्ञान से ढक जाती है, तो जो भक्त होते हैं, जो ऐश्वर्य में होते हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भगवान को ऐश्वर्य में पूजन करते हैं, जैसे वैकुंठ में, वैकुंठ में भगवान की पूजा ऐश्वर्य में की जाती है। इसीलिए कहा गया है कि वहां पर केवल 2.5 रस है वैकुंठ में, और 5वां रस भगवान के ये गोलोक में पाए जाते हैं। तो वैकुंठ में 2.5 रस है, इसका क्या अर्थ है? दो प्रमुख रस हैं, शांत रस और दास्य रस वहां पर। तो दासत्व की महत्ता है वहां पर वैकुंठ में। क्यों? ऐश्वर्य है, भगवान की सेवा ऐश्वर्य भाव में की जाती है। तो ये दोनों प्रमुख हैं, इसलिए दो। और बाकी जो रस हैं 3, वात्सल्य और साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इन तीनों को आधा माना गया है। आचार्यों ने कहा तीनों मिला के आधे हैं, तो 2.5 रस हैं टोटल। लेकिन इन रसों की पूर्णता गोलोक में है, वृंदावन में है, इसीलिए वहां पूरे 5 रस पाए जाते हैं। तो ऐश्वर्य भगवान का और मधुरता, ये दोनों का जो संयोग होता है, मिलते हैं, ये हम वैकुंठ के बाद गोलोक में देखते हैं। गोलोक में मधुरता प्रधान है, ऐश्वर्य भी है भगवान का, ऐसा नहीं वहां ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन मधुरता की प्रधानता है। जैसे हम भगवान के विग्रह सेवा करते हैं, तो हम भगवान की विग्रह सेवा ऐश्वर्य भाव में करते हैं, भगवान की विग्रह सेवा माधुरी भाव में नहीं हो सकती। माधुरी भाव में होगी तो पता चला कि कृष्ण को कुछ श्रृंगार किया ही नहीं, 4 फूल लगा दिए उनको और थोड़ा बहुत कुछ कपड़ा बांध दिया, बस माधुरी भाव है कृष्ण का। लेकिन कृष्ण की सेवा, विग्रह की सेवा बड़े ऐश्वर्य में की जाती है, उनको बड़े आभूषण पहनाए जाते हैं, उनके सर पे मुकुट होता है, कपड़े बड़े ऐश्वर्यशाली होते हैं, मंदिरों में जो भी भगवान की विग्रह सेवा मंत्रों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा उनकी सेवा होती है, तो ये ऐश्वर्य भाव है। इसीलिए हालांकि हम लोग राधा और कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन विग्रह सेवा लक्ष्मी नारायण के भाव में करते हैं, अर्थात ऐश्वर्य भाव में। नहीं तो आवश्यकता नहीं है इतना ऐश्वर्य, भगवान को इतने गहने पहनाना, इतना ऐश्वर्यशाली कपड़े। अब वृंदावन में गाय चराने जाते थे थोड़ी ना इतने ऐश्वर्यशाली कपड़े पहन के जाते होंगे। वो तो जब द्वारिका में आए तब पहनने लगे, वहां तो सादे रहते थे, ग्वाल बाल की तरह बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। आभूषण वहां भी पहनते थे, ऐसा नहीं है। वर्णन है कि जब भगवान माखन चुराने जाते थे तो अंधकार होता था, तो जो उनके आभूषण थे उससे ही प्रकाश हो जाता था, तो उनको पता चल जाता था कि कहाँ रखा है, मटकी चुरा लेते थे, तो वहां भी पहनते थे। लेकिन भाव ऐश्वर्य का नहीं था, भाव मधुरता का था। वहां कोई यशोदा मैया उनको मंत्र के साथ, मुद्राओं के साथ भोग नहीं लगाती, वहां तो सीधे रखती, खा ले चुपचाप, जो ग्वाल बाल है वो भी लेकर सीधा मुंह में डालते हैं, बस खाओ। तो अगर हम लोग भी उसी भाव में यहाँ पर सेवा करने लगे तो वही होगा। अब बस भगवान के सामने रखेंगे, भाई खाना हो खा लेना, नहीं खाना हो बता देना, उठा के ले जाएंगे। तो वो भाव नहीं है, ऐश्वर्य भाव में सेवा होती है। हाँ, कभी कभी जहाँ छोटे मंदिर है वहां मधुरता का प्रधानता हो जाती है, जहाँ ऐश्वर्य को भूल जाते हैं भक्त। लेकिन वो जब तक छोटा है ठीक है, जब मंदिर बड़ा होता है ऐश्वर्य बढ़ जाता है। तो जय श्री श्री गौर नटराज दयाल नेताई की जाए। तो ऐसे वसुदेव जी अब प्रार्थना करने लगे। तो वसुदेव जी ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? वसुदेव जी ने कहा कि आप ही सृष्टि के आदि हैं, अर्थात आपसे सृष्टि आती है, और केवल सृष्टि आती नहीं, आप सृष्टि करते नहीं हैं, सृष्टि में जो कुछ चाहिए वो भी आप प्रदान करते हैं। देखिए, हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं कि भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता, भगवान की शक्ति के बिना, भगवान के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो भगवान इस सृष्टि में भी, ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, कोई भी सृष्टि हो, करते वही हैं, और उसके लिए जो चाहिए वो भी वही प्रदान करते हैं। अर्थात हम ब्रह्मा जी को सृष्टा कहते हैं कि ब्रह्मा जी सब कुछ प्रकट करते हैं, ब्रह्मा जी से अलग अलग शरीर प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने अलग अलग योनियां प्रकट की, जीवों को अलग अलग स्थान प्रदान किए, ब्रह्मा जी ने ये 14 भुवन बनाए, कुछ भी नहीं था जब ब्रह्मा जी आए, तो फिर ब्रह्मा जी ने कमल की दंडी को 14 भागों में बांट दिया, 14 लोक बने, ये सब कहा जाता है। तो ये है ब्रह्मा जी के स्तर की सृष्टि। लेकिन भगवान उस सृष्टि को करने के लिए जो चाहिए वो भगवान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कहां से बनाते सृष्टि? ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कुछ तो चाहिए था। ये जो कमल आया, कमल की दंडी में उन्होंने 14 लोक बनाए, तो सबसे पहले कमल चाहिए, कमल भगवान ने प्रदान किया। अब अगर वस्तुएं हैं भी तो फिर ब्रह्मा जी को बुद्धि चाहिए। तो इसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को खुद ही कुछ पता नहीं था, जब जन्म हुआ ब्रह्मा जी का, प्रकट हुए, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कमल की दंडी में नीचे जाए तो इतना बड़ा भयंकर समुद्र देखा, डर कर फिर वापस ऊपर चले गए हैं, अंधकार में घूम रहे हैं, कहां से सृष्टि करते ब्रह्मा जी? सृष्टि करता उनको कहा जाता है, इन कहां से सृष्टि करते? और फिर जब कुछ समझ नहीं आया तब भगवान ने कहा मैं बताता हूं क्या करना है। फिर तपह, उनके कान में शब्द आया, तपह, तपस्या की उन्होंने, तो तपस्या करने की प्रेरणा भी भगवान ने दी। फिर तपस्या करने के बाद भी क्या करना है पता नहीं था, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने बताया ऐसे सृष्टि करो। तो आप सोचिए कि प्रारंभ से लेकर, और जो पहले उसके लिए चाहिए इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए, सृष्टि करने के लिए, वो भी भगवान प्रदान करते हैं, जीवों को भगवान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी करते क्या है? ब्रह्मा जी केवल जो सब है उसको मिला जुला कर थोड़ा सा कुछ, जैसे रोटी बनानी हो तो किसी ने गेहूं भी ले ली, पीस भी दिया, आटा भी बना दिया, गूंद भी दिया, आटा सब करके रेडी रख दिया, अब उस आटे को लेकर गोल बनाकर चपाती बना दी, ब्रह्मा जी का इतना ही काम है। अगर आटा ही नहीं होता, गेहूं ही नहीं होती, किसी ने गूंद कर दिया नहीं होता, तो ब्रह्मा जी करते हैं क्या? वो कर नहीं सकते। जैसे हम लोग घर में होते हैं, सरल चीज है, घर में कोई चपाती बनाते हैं तो किस पूछा जाता है, अरे चपाती किसने बनाई? बोले माता जी ने बनाई चपाती। लेकिन चपाती बनाई उन्होंने कैसे? घर में आटा आया, आटा आया कैसे? वो किसान ने मेहनत की, किसान ने मेहनत की क्यों, क्योंकि भगवान ने उसको अन्न दिया, तो इसीलिए देने वाले भगवान है। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, यहां जो वो वसुदेव जी कह रहे हैं आप ही सृष्टि के आदि हैं, आपसे ही सृष्टि आती है, और सृष्टि करने के लिए जो चाहिए वो भी आप प्रदान करते हैं, आप ही सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि सृष्टि के जितने अव्यय, जितने तत्व हैं, भूमि राप नलो वायु हम मनो बुद्धि रेव च, इन सबको भी आप ही प्रदान करते हैं और इनको शक्ति भी आप देते हैं, पृथ्वी में सुगंध आप देते हैं, जल में स्वाद आप देते हैं, वायु में स्पर्श आप देते हैं, अर्थात जो तत्व आते हैं उनमें भी शक्ति आप ही प्रदान करते हैं। और फिर वो कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं के अंत में कि जो आपको समझ नहीं पाते हैं वो केवल जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, वसुदेव जी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में वो कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है इसका उपयोग क्या है, सच्चा उपयोग, सही उपयोग। मनुष्य जीवन का सही उपयोग है कि हम किस तरह से अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाएं, ये जानते हुए कि सब कुछ उनका है। वस्तुतः सकली तब जीवे के होनाए, जब तक इस बात को नहीं समझता है जीव अहम मम भ्रमि भ्रोमि भोगे शोक भय, तो तब तक वो अहम मैं और मेरा में फंसा रहता है। जिस दिन ये जान रखता है, जान जाता है कि सब कुछ भगवान का है, फिर कहां मैं और कहां मेरा, और मैं मेरा निकल गया तो फिर कहां भौतिक अस्तित्व। भौतिक अस्तित्व के यही दो आधार हैं, मैं और मेरा, बस मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं करता हूं, और ये मेरे हैं, ये मेरे कारण हुआ है। तो ये भौतिक अस्तित्व का लक्षण है, मैं और मेरा। और जब व्यक्ति ये समझ जाए कि वस्तुतः सकली तव जीवे के होनाए, सब कुछ आपका है, जीव का कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या होता है, मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। और मैं मेरा समाप्त हुआ तो फिर कृष्ण की प्राप्ति बहुत सरल है। तो वसुदेव जी ये समझाते हैं कि मनुष्य जीवन में एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, मनुष्य जीवन ये एक भाग्य है, बहुत भाग्य से मिलता है मनुष्य जीवन। और ये भाग्य क्या है, भाग्य से इसलिए नहीं मिलता कि आप इसमें बड़ा आनंद ले सकते हो, आप इसमें प्लेन में उड़ सकते हो, आप इसमें मिसाइल बना सकते हो, आप इसमें अनियंत्रित भोग कर सकते हो, आप भोग की सुविधा के लिए बहुत सारे कारण प्रकट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता नहीं है। मान दुर्लभम मानुषम देहो देहिना क्षण भंगुर, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है लेकिन है क्या, क्षण भंगुर, समाप्त हो जाने वाला है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसीलिए दुर्लभता क्या है मनुष्य जीवन की, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा में लगना। और वसुदेव जी कहते हैं जो इसको नहीं समझ पाता वो अपने जीवन को व्यर्थ करता है। और इसीलिए अब वो कहते हैं कि मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ले रहा हूं। एक पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब वो जान गए हैं कि ये मेरे पुत्र नहीं है, ये भगवान है। तो मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ले रहा हूं, बहुत हो गया ये मैं वसुदेव हूं, आप मेरे पुत्र हैं, अब ये देवकी मेरी पत्नी है, ये मेरा राज्य है, बहुत हो गया ये सब, ये केवल भय उत्पन्न करता है, मुझे बचाइए इस भय। अर्थात वसुदेव जी कहते हैं आसक्ति ये भय को लाती है, भय उत्पन्न करती है। तो आसक्ति क्या है, यही आसक्ति है पुत्र दारादिशु, ये जो आसक्ति रहती है वो क्या करती है, आसक्ति हमें देखने नहीं देती सत्य को, पश्यन अपि न पश्यति, हम देख कर भी नहीं देखते हैं ये भौतिक जगत है,
क्या देखकर नहीं देखते हैं, ये देख रहे हैं कि वैसे हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। तो वसुदेव जी ने ऐसे प्रार्थनाएं की और फिर कृष्ण ने उनसे कहा। तो यहां कृष्ण ने मना नहीं किया, कृष्ण ने कहा आपने जो कहा एकदम सही है, आपने जो भी हमारे बारे में कहा वो एकदम सही है। लेकिन फिर कृष्ण को लगा कि थोड़ा सारे द्वारका वासियों के सामने सब हैं, इतने और भी लोग हैं, कोई सुन रहे होंगे, तो उनके सामने ये कहना कि मैं श्रेष्ठ हूं अच्छा नहीं लगता है पिता के सामने। तो उन्होंने कहा कि जितने द्वारका वासी हैं वो भी उसी स्तर पर हैं, सत्य कह रहे थे, क्योंकि वो सब नित्य संगी हैं भगवान के। तो ऐसे जीव में और भगवान में एकत्व है। तो भगवान यहां इस बात को कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है और भौतिक गुणों का स्पर्श भी नहीं करती है। परमात्मा शाश्वत है, परम भगवान शाश्वत है, वो कभी भौतिक गुणों का स्पर्श नहीं करते हैं, एक ही हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो जब ऐसे बातचीत चल रही थी, देवकी वहां पर थी और देवकी ने फिर श्री कृष्ण का गुणगान किया कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं इत्यादि। और फिर देवकी ने एक प्रार्थना की। देवकी की प्रार्थना क्या थी? देवकी ने प्रार्थना की कि मैंने सुना है, मैं जानती हूं कि आप अपने गुरु के पुत्र को वापस ले आए थे, वो पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी आपने पुनः लाकर वापस दिया था, तो मेरे मन में भी एक इच्छा आ रही है, आप तो योगेश्वर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे मन में एक इच्छा आ रही है। क्या इच्छा आ रही है? कि मेरे भी पुत्र मारे गए, 6 पुत्र, क्या आप उनको वापस ला सकते हैं? आप ला सकते हैं मैं जानती हूं, लेकिन कृपया उनको भी वापस ले आइए, जैसे आप अपने गुरु के पुत्रों को वापस लाए थे। तो उस समय देवकी बहुत सुंदर बात कहती है, जब वो ये बतला रही हैं कि सब कुछ आपसे आता है, तो देवकी कहती है यस्यांश अंश सभागे न विश्वोत्पत्ति लयोदय। यस्यांश अंश सभागे न, जिनके अंश के भाग से विश्व की उत्पत्ति होती है और विश्व बना रहता है और उसका लय, उसका नाश हो जाता है। तो किसकी बात कर रही है देवकी? यस्यांश, कृष्ण के अंश और उनके अंश अर्थात महाविष्णु और महाविष्णु के भाग या 3 गुण, या दूसरे शब्दों में यस्यांश अंश सभागे न, जिनके अंश है महाविष्णु और जिसके अंश है भौतिक प्रकृति और उसके 3 भाग हैं, 3 गुण, तो उनसे सब कुछ होता है। तो ऐसे कहकर बड़ी प्रार्थना की, तो कृष्ण ने स्वीकार किया कि ठीक है, मैं जैसे अपने गुरु के पुत्र को लाया था आपके पुत्रों को भी वापस ला कर देता। तो श्री कृष्ण उस समय सुतल लोक जाते हैं बलि महाराज के पास, क्योंकि ये जो 6 पुत्र हैं ये इस समय सुतल लोक में थे, वहां बलि महाराज के साथ रह रहे थे। तो फिर भगवान जाते हैं सुतल लोक, और जैसे ही भगवान पहुंचते हैं, कृष्ण बलराम जाते हैं, तो बलि महाराज भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो जानते हैं कि ये वही भगवान है, वही जो मेरे सामने आए थे, जिनको मैंने कुछ दान देने का प्रयास किया था, तो इसीलिए वो उनके चरणों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और फिर ये सब करने के बाद उनके जब चरणों के जल को धोकर वो अपने ऊपर, जितने वहां पर उपस्थित अपने परिवार के लोग, अन्य लोग हैं, उन पर वो जल को छिड़कते हैं, और फिर वो भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको देखना तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमारे जैसे लोग आपकी कृपा से ही आपको देख पाते हैं। वो कहते हैं कि आपके प्रति लोग बहुत तरीके से आकृष्ट होते हैं, आपकी कृपा क्या है? आपकी कृपा यह है कि कोई भी आपकी तरफ आकृष्ट हो जाए किसी भी भाव से, आप उसको मुक्त कर देते हैं शत्रुता के भाव से। बहुत से शत्रु हुए आपके, जिन्होंने शत्रुत्व भाव से आप पर आक्रमण किया या आपसे संपर्क किया, आपने उन्हें शुद्ध कर दिया। कई लोग तो कहते कि कुछ लोग शत्रु भाव से आपके पास आते हैं, कुछ लोग घृणा से आते हैं, आपसे द्वेष करते हैं, शिशुपाल आदि। तो कुछ शत्रुत्व भाव से, जैसे असुर आए, उन्होंने आक्रमण किया, भगवान को शत्रु माना, द्वेष से शिशुपाल आदि, उन्होंने बहुत द्वेष किया, आपने उनका भी उद्धार कर दिया। और कुछ लोग काम से आते हैं आपके पास। इसी बात को सातवें स्कंद में नारद मुनि कह चुके हैं युधिष्ठिर महाराज को, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चेदादयो नृपः। तो कहते हैं कि गोपियों ने काम से, काम मतलब शुद्ध प्रेम से, भगवान को जीत लिया, भगवान को प्राप्त किया। गोप्या कामाद भयात कंसो, कंस ने डर से भगवान को प्राप्त कर लिया। द्वेषा चेदादयो नृपः, शिशुपाल आदि ने द्वेष से श्री कृष्ण को प्राप्त किया। संबंधात, वृष्णियों ने संबंध से प्राप्त किया। स्नेहात, आप सबने स्नेह से कृष्ण को प्राप्त किया। भक्त्या वयम, और हमारे जैसे लोग, नारद मुनि कहते हैं हम भक्ति से कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो ये बलि महाराज भी इसी बात को कह रहे हैं कि लोग शत्रुत्व, अगर आपसे कोई शत्रु भी आपका बन जाता है तो मुक्त हो जाता है। ये भगवान का गुणगान है। हमारा कोई मित्र बनता है तभी हम उसको कुछ देते हैं, कुछ कृपा करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति भी अगर आकर जब तक गुणगान नहीं करेगा कुछ नहीं देंगे। मान लीजिए जैसे दरवाजे पर कुछ लोग मांगने के लिए आते हैं, हम लोग उनको प्रसाद इत्यादि कुछ देते हैं। मान लीजिए कि यही आकर बहुत निंदा करे खड़े होकर, अपशब्द कहे, तो हम लोग प्रसाद नहीं देंगे, उसको भगाएंगे यहां से, चले जाओ यहां से, आना नहीं दोबारा। और रोज आकर हमें अपशब्द कह रहे तो हम लोग बिल्कुल उसको आने नहीं देंगे। भगवान अपशब्द नहीं, मारने के लिए आ रहा है। ये सोच कर आया कि मारूंगा, कोई जहर लगा कर आ रहे हैं, कोई दूसरी तरह से मारने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण उनको भी शुद्ध कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है, ये भाव भक्तों को चाहिए। हम भगवान बनना चाहते हैं तो क्या ये भाव है? हम भक्त बनना चाहते हैं तो क्या ये भाव है? हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो क्या ये भाव है? हमारे से तो कोई अगर शत्रुता कर ले तो हम तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, और उसके ऊपर कृपा तो दूर की बात है। कोई अपमान तक कर दे हम उसको कुछ नहीं, देखना भी नहीं चाहते। लेकिन भगवान मारने आ रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त करने आ रहे हैं भगवान उनको भी। और ऐसे भी लोग इस जगत में जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, जो असुर है वो उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इस जगत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर दिया समाप्त उनके अस्तित्व को अपने अपने ज्ञान से, तथाकथित ज्ञान से। भगवान है ही नहीं, भगवान का रूप नहीं है, निराकार है। भगवान उन पर भी कृपा करते, उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। क्या कृपा है भगवान की, क्या भाव होगा? ऐसा भाव उस भक्त का होता है जो भगवान के संपर्क में, उसे आचार्य कहते हैं। तो ऐसा भाव होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इस भाव को प्रकट किया कि जो लोग, कोई उनको रुचि नहीं थी, प्रभुपाद ने उनके लिए भी प्रार्थना की। जिन्होंने निंदा की, प्रभुपाद ने उनके लिए भी प्रार्थना की। जब श्रील प्रभुपाद अपना देह त्याग रहे थे तो उन्होंने ये सब बातें कही, उन्होंने अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांगी। हालांकि आवश्यकता नहीं थी श्रील प्रभुपाद को, उन्होंने भगवान के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने किया, क्षमा मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रचार के समय कई शब्दों को इस्तेमाल किया, लेकिन वो प्रचार के लिए आवश्यक था, फिर भी वो शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, क्षमा मांगी भक्त प्रभुपाद ने। तो ये भक्त है। तो जिन लोगों ने विरोध किया, जिन्होंने निंदा की, कोई द्वेष नहीं था प्रभुपाद को उनके प्रति, तो ये भगवान का भाव है। एक भक्त को ये भाव लाना चाहिए। जब तक द्वेष बना हुआ है किसी भी व्यक्ति से, चाहे उस व्यक्ति से जिसने हमारे से कुछ बुरा किया, या उस व्यक्ति से जो हमसे आगे निकल गया, द्वेष हमें केवल उस व्यक्ति से नहीं होता है जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया, द्वेष हमें उस व्यक्ति से भी होता है जिसने जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है लेकिन वो हमसे आगे निकल गया। एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति को देखकर बेकार में द्वेषी होता है, क्यों? इसके पास इतना धन है, मेरे पास नहीं है, द्वेषी बन जाता है। और इसको हम लोग देखते हैं समाज में, कई बार ऐसा होता है, हम एक स्थान पर थे तो अफ्रीका में, तो वहां पर इलेक्शंस हो रहे थे, तो हमने सुना कि वहां पर दंगे हो गए, कोई व्यक्तियों ने एक कुछ दल ने जाकर कुछ लोगों ने जाकर किसी की दुकान तोड़ दी, किसी का घर जला दिया, कुछ लूट लिया। तो हम सोच रहे थे क्या इन लोगों को मिलता है, इलेक्शंस हो रहे हैं, वो वहां पर हैं, कोई अपने आपस में लड़ने वाले हैं, तो ये यहां आकर क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो द्वेष पाले बैठे थे, अरे इसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, जरा सा अवसर मिला तो सब जाकर लूट। तो देखिए, अगर किसी के पास कोई चीज है उससे द्वेष हो जाता है, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन द्वेष कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान के इस गुण को हमें सीखना है, जो बलि महाराज यहां कह रहे हैं कि चाहे कोई शत्रुता करे, कोई द्वेष करे, कोई किसी भी तरह, बलि महाराज कहते लेकिन देवता ये आपके भक्त नहीं बन पाते देवता, क्यों? क्योंकि जो सत्व गुण है उनको मिला है उससे वो बड़े प्रभावित हो जाते हैं और उसी में पड़े रहते हैं, वो भक्त नहीं बन पाते हैं। लेकिन बाकी लोग शत्रुता से भी बन जाते हैं। तो अर्थात वो कृष्ण को कह रहे हैं कि देव वो व्यक्ति जो सुविधा मिली है भक्ति की उसको लेकर आपकी सेवा में नहीं लगता, वो भक्त नहीं बन पाता। सुविधा आप सबको दे रहे हैं लेकिन जो सुविधा का उपयोग नहीं करता, जैसे देवता भोग में पड़े रहते हैं, तो वो भक्त नहीं बन पाते। इसका अर्थ क्या है? बलि महाराज क्या कह रहे हैं कि देवता भक्त नहीं है? देवता भक्त हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्र भक्त हैं। और बलि महाराज वो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो देख सकते हैं क्या भाव है इनका, क्या चाहते हैं ये लोग, हृदय में इच्छा क्या है। कृष्ण भक्ति की इच्छा है लेकिन साथ साथ थोड़ी और इच्छाएं भी बनी हुई हैं। और फिर अंत में अपनी प्रार्थनाओं के बलि महाराज भगवान से याचना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये पारिवारिक जीवन में फंसा हुआ हूं, अंधकूप में फंसा हुआ हूं, अंधे कुएं में, कृपया मुझे इससे बाहर निकालिए, ये मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं इससे बाहर निकल सकूं और सही दृष्टि में आपके चरण कमलों का आश्रय ले सकूं। मैं फंसा हुआ हूं परिवार में, मैं फंसा हुआ हूं पत्नी संतान इत्यादि में, भूल गया हूं कि मेरे मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इच्छा क्या है। बलि महाराज कहते हैं मेरी इच्छा है कि मैं स्वतंत्र रूप से अलग अलग स्थानों में घूम सकूं आपके नामों को लेता हुआ, अकेले या फिर साधुओं के साथ, लेकिन यहां मुझे बांध कर रखा हुआ है, जा नहीं सकता मैं। तो बड़ी सुंदर इच्छा उन्होंने प्रकट की है कि मुझे मेरा उद्धार कीजिए इस पारिवारिक जीवन से, इस ये अंधकूप से। तो क्या करूं, मैं दुनिया भर में मुक्त अवस्था में घूम सकूं आपका नाम लेते हुए, आपका गुणगान करते हुए, आपकी कथा सुनते हुए, आपकी सेवा करते हुए, सब जगह भ्रमण करूं, चाहे अकेले करूं या फिर भक्तों के साथ करूं, बस उसमें मेरे कोई बंधन ना हो, स्वतंत्रता से आपकी सेवा कर सकूं। हर जीव को ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे कृष्ण, आपकी सेवा स्वतंत्रता से कर सकूं। स्वतंत्रता मतलब हमें स्वतंत्रता किससे चाहिए? हमें स्वतंत्रता भोग करने के लिए नहीं चाहिए कि भगवान ये बाधाएं आती हैं, रोग आ जाता है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं भोग करने के लिए। नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हैं भगवान आपकी सेवा करने के लिए। क्यों? फंसे हुए हैं, आसक्तियां हैं, बंधन हैं, इनको काटिए ताकि स्वतंत्र रूप में सेवा हो। कितना, किस आनंद का अनुभव किया होगा बलि महाराज ने केवल ये कहकर कि मैं स्वच्छंद रूप में हर समय घूम सकूं हर स्थान पर और आपकी सेवा कर सकूं। और अगर हम सब भी देखें तो हम सबके हृदय में ऐसी इच्छा है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं है। अगर हम भक्त हैं, अगर हमें भगवान से थोड़ा बहुत भी प्रेम है, तो इच्छा ये है कि स्वच्छंद रूप से। तो हमें कौन बांधे रखता है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बांधती है स्वतंत्र नहीं होने देती या स्वच्छंद रूप से कृष्ण की सेवा नहीं करने देती। एक बाहरी आकर्षण है पारिवारिक पारिवारिक लोग परिवार इत्यादि, लेकिन क्या जिनके परिवार नहीं है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य संन्यास लिया है, क्या उनका कोई बंधन नहीं है? उन्हें भी बंधन है। तो सही दृष्टि में जीव का बंधन क्या है, कौन सा ऐसी बाधा या बंधन है जो मुक्त रूप से कृष्ण की सेवा नहीं करने देती? वो बंधन है हमारी इच्छाएं, वो बंधन है हमारी भोग प्रवृत्ति, वो बंधन है हमारी आसक्ति, वो बंधन है इस जगत में आनंद लेने की कामना, तो बंधन है ये। तो हमें बाहरी बंधन से पहले आंतरिक बंधन को तोड़ना है, उस इच्छा को त्यागना है। फिर अगर हम बाहरी समाज में भी हैं तो भी हम स्वच्छंद रूप से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए बलि महाराज ये प्रार्थना करते हैं। तो जब भगवान ने ये सुना और फिर उन्होंने पूछा कि आप यहां आए हैं तो आपका कोई कारण होगा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि इतिहास बताया कि पूर्व काल में मरीचि के 6 पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी को देखा उन्होंने कि अपनी ही पुत्री के पीछे भाग रहे हैं तो हंस दिए, भूल गए ब्रह्मा जी की स्थिति, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई महान व्यक्ति कुछ करता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसकी स्थिति नहीं जानते हैं, वो किस लिए वो कार्य कर रहा है। जैसे ब्रह्मा जी जैसे लोग जो कर रहे हो भगवान की योजना से हो रहा और हम उस पर हंस दें तो अपराध हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा, समझने का प्रयास मत कीजिए ऐसा क्यों कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है। जज नहीं करना चाहिए हमें, उनकी भक्ति उनके महत्व उनके स्थिति को देखकर आचरण करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने अपराध कर दिया, इसीलिए फिर अगले जन्म में वो कालनेमी के पुत्र बने, फिर कालनेमी के उनको श्राप मिला हिरण्यकश्यपु का, और फिर वो आगे चलकर देवकी के गर्भ में आए और कंस के द्वारा मारे गए। तो ये वर्णन भगवान ने किया। और अब वो पुत्र आपके यहाँ हैं 6 के 6 सुतल लोक में, और मेरी माता देवकी की इच्छा है कि वो उन्हें फिर से पुनः प्राप्त करना चाहती हैं, तो मैं उनको लेने आया। तो जब बलि महाराज ने सुना तो तुरंत उन पुत्रों को लाकर दे दिया, ये 6 पुत्र ले जाइए देवकी के। तो श्री कृष्ण लेकर आए। अब ये कब का समय था आप सोचिए, ये कृष्ण बड़े हो चुके हैं, उनका विवाह हो चुका है, उनकी संतानें हो चुकी हैं, इतना सब हो चुका है तो वो भी बच्चे बड़े होंगे। लेकिन वर्णन है कि जैसे ही देवकी ने अपने 6 पुत्रों को देखा तो उसको बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ है, उसके स्तनों में दूध बहने लगा। वो कब होता है जब माता जन्म देती है बच्चे को, लेकिन उस समय वो ये कर नहीं पाई थी क्योंकि कंस तो आते ही जैसे ही जन्म लिया मार देता था। तो अब वो भाव में देवकी आई और उन्होंने आदान प्रदान किया, अपने संतानों से प्रेम किया, और फिर भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया मतलब जहां थे वापस भेज दिया अपने स्थान पे, जाओ मरीचि के पुत्र हो जाओ और फिर से वहां से फिर आपका आगे उद्धार होगा। तो वापस स्थान में चले गए भगवान की कृपा से। और देवकी ने देखा तो देवकी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि पुत्रों को लाना, फिर पुत्रों से उन्होंने और फिर पुत्रों का वापस उस स्थान से उद्धार हो जाना। तो देवकी ने सब देखा और देवकी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तो इस कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी इसको सुनने का लाभ देते हैं। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि नित्य कीर्ति वाले भगवान मुरारी द्वारा की गई यह लीला ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह नष्ट करती है और भक्तों के कानों के लिए दिव्य आभूषण जैसा काम करती है। जो भी व्यास देव के पुत्र द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता या सुनाता है वे भगवान के ध्यान में अपने मन को स्थिर कर सकेगा और ईश्वर के सर्व मंगलमय धाम को प्राप्त करेगा। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण के जीवन की अद्भुत घटनाओं का श्रवण करना पापों का नाश इस विधि से करता है। कैसे पापों का नाश होता है? जो पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान के लिए बहुत आसान है, कोई भी श्रवण में भाग ले सकता है। और जो लोग कृष्ण के भक्त बन जाते हैं वे उनसे संबंध कथाओं को अपने कानों में धारण करके आनंद लेते हैं। तो ऐसे इस कथा को यहां पर कहा गया। अब आगे अगला अध्याय में एक प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने कि आपने बहुत सी कथाएं सुनाई, एक रह गई। अरे कौन सी रह गई? उस सुभद्रा का हरण कैसे किया, वो तो मैं भूल गया, मैंने पूछा नहीं। अच्छा ठीक है, फिर अभी अगले अध्याय में सुभद्रा के हरण की कथा को कृष्ण कहें। भगवान कृष्ण ने कैसे सुभद्रा के हरण को करवाया ये सुखदेव गोस्वामी आगे कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, प्रश्न ये है कि हमने कहा कि भगवान का भाव है कि कोई मारने भी आता है तो भगवान उनको शुद्ध कर देते हैं, तो भगवान के भाव हैं, हम लोग साधारण जीव हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जीव भगवान का अंश है, हम भूल जाते हैं इसको, और अंश होने के नाते हमारे अंदर वो सारे गुण हैं जो भगवान में हैं। मात्रा कम है लेकिन गुण हैं, और उन्हीं गुणों को उत्पन्न करना ये भक्ति कहलाती है। जब हम अग्नि में किसी चीज को डालते हैं, जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, जब अग्नि में लोहे को डाला जाता है तो लोहा अग्नि से बहुत भिन्न है, लेकिन अग्नि में पड़कर वो भी अग्नि हो जाता है, लक्ष्य उन गुणों को ले लेता है। तो इसी तरह भक्ति एक अग्नि की तरह है और हम लोहे की तरह है, कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर भक्ति रूपी अग्नि में डाला जाए तो जो कृष्ण के गुण हैं वो हम में वैसे भी हैं, तो वो फिर गुण और अच्छी तरह से प्रकट होते हैं। तो इसलिए भले भगवान के गुण हैं लेकिन क्योंकि हम जीवांश हैं हमारे अंदर भी हो सकते हैं। तो अब कैसे उसको करें, बहुत कठिन लगता है कि कोई अपमान करने आ रहा है कोई, तो कैसे उत्पन्न करना है? तो जैसे भगवान ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया कि सबसे पहला ज्ञान कि हम जब किसी व्यक्ति को अलग मानकर उससे मान अपमान लेते हैं तो हम उनको भिन्न मानते हैं, अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। अगर हम अपनी स्थिति को पहले जान लें, जिसे आत्म साक्षात्कार का पहला चरण कहते हैं, तो फिर बड़ा सरल हो जाता है इस चीज को समझना कि व्यक्ति जिसका अपमान कर रहा है, जिससे शत्रुता कर रहा है, वो तो मैं हूं ही नहीं। जैसे प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं एक प्रसिद्ध दार्शनिक का, तो उनको पकड़ लिया गया और उनको जहर दिया जा रहा था, और जहर दिया जा रहे, प्रभुपाद कहते वो बोल रहे हैं कि अरे मूर्खो मुझे पहले पकड़ो फिर जहर देना। तो लोग सोचे कि अरे इसका दिमाग खराब हो गया, इसको हमने पकड़ा हुआ है जहर दे रहे हैं और ये कह रहा है आप पहले मुझे पकड़ो फिर जहर देना, और उसने बड़े आराम से पी लिया। तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को आत्मा के स्तर पर जानता था, तो उन्होंने इसीलिए जब लोगों ने पकड़ा तो कह रहे थे पहले मुझे पकड़ो, आपने तो मेरे शरीर को पकड़ा है, आत्मा को पकड़ा ही नहीं, आप जहर आज शरीर को दे रहे हो, मुझे मार नहीं सकते। तो जब ये ज्ञान जब तक नहीं है तब तक उस स्तर पर आना बहुत कठिन है। ठीक है, ओके, किसी के कोई प्रश्न यहां पर? जब कोई शारीरिक कष्ट होता है तो भगवान का भजन करने में, जप करने में उतना उत्साह नहीं रहता जितना हमेशा रहता है। हर परिस्थिति में भगवान से प्रेम बढ़ता रहे, कोई भी स्थिति हो, उसको कम ना कर सके, ऐसा कैसे होगा। हाँ, ये शारीरिक अवस्थाएं बाधा हैं, बीमार हो जाएं, कष्ट हो, तो फिर भक्ति के मार्ग को हम पालन नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम इस स्तर पर रहें कि ये जो शरीर के कष्ट हैं, ये कष्ट जब आए तो कृष्ण का स्मरण और बढ़ जाए। प्रयास ये करना चाहिए, कैसे, कि जब कष्ट हो शरीर में बहुत ज्यादा तो कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब प्रार्थना करेंगे तो स्मरण बढ़ेगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान क्यों कष्ट दे रहे हैं, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूं। नहीं, भगवान को स्मरण करना चाहिए कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कष्ट आए, आने दीजिए, लेकिन आप मुझे उसकी शक्ति भी दे दीजिए कि मैं उन कष्टों को सहन कर सकूं। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। हमें कष्टों को दूर करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अगर आपकी इच्छा है कि जीवन में कष्ट आए, आने दीजिए, बस शक्ति भी दे दीजिए कि दो चीजें हों, मैं इन कष्टों को सहन करते हुए आपको भूलू नहीं, बस आपका स्मरण बना रहे, फिर चाहे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, कोई चिंता नहीं, लेकिन आपका स्मरण बना रहे। तो ऐसी प्रार्थना हम भगवान से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? कृपया इसको फेसबुक पर भेजिए, वीडियो ऑलरेडी फेसबुक पर है, आप लोग अगर उस पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ऑलरेडी है ना फेसबुक पर। और एक प्रश्न, जब किसी की डेथ होती है तो वो हमेशा तो पितृ योनि में तो नहीं रहते हैं, उसका रिबर्थ होता होगा, तो ऐसे में हम जो श्राद्ध करते हैं तो वो उनको कैसे मिलता है? वो जहां भी हो, दरअसल जब श्राद्ध किया जाता है तो प्रार्थना ये होती है कि वो जैसे भी हो, जहां भी स्थिति में हो, जिस अवस्था में हो, वहां से उनको सदगति प्रदान हो। तो मान लीजिए कि वो किसी योनि में है और उस योनि में उन्हें कष्ट हो रहा है, पशु योनि में है, मनुष्य योनि में है, कहीं पर भी है, उन्हें वहां कष्ट हो रहा है, तो वहां से उनको सदगति, मतलब उससे आगे की गति प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए श्राद्ध करते हैं कि ताकि वो कहीं भी हो। हाँ, एक होता है कि पितृलोक में है तो उनको वहां पर बने रहे भोग के लिए, आनंद के लिए, लेकिन भक्तों का भाव श्राद्ध करने का ये भी नहीं होता कि जो पितृलोक में है वो वहां बने रहें। भक्तों का भाव होता है कि वो पितृलोक में ना रहकर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लें। तो इसलिए वो कहीं भी हों, अगर हम वैष्णव पद्धति से श्राद्ध करते हैं तो उनके लिए भक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो हो सकता है वो किसी मनुष्य योनि में कहीं किसी स्थान पर हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं जन्म हो, लेकिन अगर हम श्राद्ध करते हैं वैष्णव पद्धति से और उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर वो जहां है वहां से उनकी भक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। अगर अश्राद्ध है तो और वो भौतिक लोग हैं सुनते नहीं तो क्या करें? शायद प्रश्न ये है कि अगर श्राद्ध करना है, भौतिकता से करना चाहते हैं, नहीं सुनते तो क्या करें, ऐसा प्रश्न, आधा प्रश्न हमें समझ नहीं आया ठीक से। तो अगर ये प्रश्न ये है कि अगर हम श्राद्ध वैष्णव पद्धति से करना चाहते हैं लेकिन घर के लोग भौतिकता में पड़े हैं, वो नहीं सुनते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो मन में कर लीजिए भगवान से प्रार्थना, क्योंकि घर का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। तो जैसे घर वाले करना चाहते हैं उनको करने दें, लेकिन आप मन में वैष्णव पद्धति से श्राद्ध कर सकते हैं। और आज जैसे एकादशी है तो उस पे नहीं सुने तो क्या करना है? ठीक है, जो कर रहे हैं, जब घर वाले नहीं सुनते हैं तो क्या किया जा सकता है? जब सुविधा हो तब हमें पालन करना चाहिए, जब नहीं है तो मन में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस श्राद्ध का भी लाभ पूर्ण रूप से जिनके लिए भी किया जा रहा है उनको मिले। ठीक है। ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभारी हैं आपके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर।